ब्रजनीश कुमार यादव की आवाज़ में छायावाद की भूमिका में बराहवां शीर्षक है परंपरा और प्रगति। छायावाद हिंदी साहित्य की परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसका जन्म हमारे साहित्य के विशेष सामाजिक और साहित्यिक परिस्थितियों में हुआ और फिर विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो जाने के कारण इनका पर्यवसान भी हो गया, पर अब यह हिंदी साहित्य के इतिहास में एक स्थापित तथ्य है। फिर भी एक युग था जब छायावाद को विदेशी कहा जाता था। आज भी कुछ लोग कभी कभी वही पुरानी बात दोहरा देते हैं, इसलिए इस भ्रम का निराकरण कर लेना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि किसी समय आचार्य जैसे विचक्षण पंडित ने भी यह कहा था कि यह अपना क्रमशः बनाया हुआ रास्ता नहीं है। शुक्ल जी की धारणा थी कि हिंदी में मैथिली शरणगुप्त मुकुटधर पांडे और आदि जिस स्वच्छंद काव्यधारा का प्रवर्तन कर रहे थे वह रविन्द्रनाथ की कविताओं तथा कुछ अन्य विदेशी वादों के प्रभाव से विपथगामी होकर छायावाद बन गया। इसलिए वे प्रसाद पंत निराला महादेवी की रचनाओं विशेषतः रहस्यवादी रचनाओं को स्वच्छंदता के स्वाभाविक विकास पथ में नहीं मानते थे। लेकिन जैसा कि प्रभाकर माचवे ने जनवरी 1954 की अवंतिका में कहा है और संभवतः हिंदी लेखकों में सबसे पहली बार इस तथ्य का उद्घाटन किया है कि शुक्ल जी के विचारों में अंतर्विरोध है, जहां उन्होंने छायावाद को परंपरा का स्वाभाविक विकास मानने से इनकार कर किया है, वहीं यह भी कहा है कि इस तृतीय उत्थान में जो परिवर्तन हुआ और पीछे छायावाद कहलाया वह इसी द्वितीय उत्थान की कविता के विरुद्ध कहा जा सकता है। और यह पहले कहा जा चुका है कि छायावाद का चलन द्विवेदी युग की रूखी इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। विरोध और प्रतिक्रिया परंपरा के स्वाभाविक विकास के ही सूचक हैं, क्योंकि विकास का अर्थ सदैव परिपाटी पालन ही नहीं होता, क्यों कोई भी विकास विरोध के बिना घटित नहीं होता। इस तरह शुक्ल जी अनजाने ही छायावाद की हिंदी साहित्य की परंपरा का स्वाभाविक विकास सिद्ध करते गए, परंतु शुक्ल जी ने तो यह कहा कि छायावाद क्रमशः बनाया हुआ रास्ता नहीं है। उसमें एक तथ्य है, भाव और रूप के दृष्टि से द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता तथा श्रीधर पाठक और मुकुटधर पांडे की स्वच्छंदतावादी कविताओं के बाद छायावादी कविताओं का उतना भव्य उत्साह आश्चर्यजनक लगता है। पूर्ववर्ती कविताओं के साथ छायावादी रचनाओं को पढ़कर सहसा ऐसा प्रतीत होता है कि इतना लंबा रास्ता इन कवियों ने इन दो तीन वर्षों में कैसे तय कर लिया। दोनों युगों के बीच भावना और रूप विन्यास का विशाल अंतर दिखाई पड़ता है, वह क्रम नहीं प्रक्रम है, एक बड़ी छलांग है। इसलिए जिन लोगों की मनोवृत्ति उस प्रक्रम के साथ कदम मिलाकर प्रगति न कर सकी वे छायावाद को विदेशी तथा विपथगामी समझने लगे। निस्संदेह छायावाद के अभ्युदय में अनेक सहायक कारण थे और उनमें रविन्द्रनाथ की बंगला कविताओं तथा वर्ड्सवर्थ और शेली की अंग्रेजी कविताओं का स्थान प्रमुख है। देश विचार से ये प्रभाव विदेशी ही कहे जाएंगे, लेकिन छायावादी कवियों ने जब उन्हें अपनाया और उनसे प्रेरणा ली तो वे उन्हें एकदम अपनी आकांक्षाओं का प्रतिबिंब समझकर यह विदेशी प्रभाव ग्रहण करने का अर्थ ही है कि छायावादी कवियों की मानसिक पृष्ठभूमि उनके अनुकूल थी, अन्यथा वर्ड्सवर्थ और शेली का प्रभाव द्विवेदी युग या उससे भी पहले भारतीय युग के कवियों पर क्यों नहीं पड़ गया। अंग्रेजी तो उस समय के लोग भी जानते थे और वर्ड्सवर्थ शैली वगैरह की रचनाओं के भारत पहुंचने के लिए 60-70 साल का समय कम नहीं कहा जा सकता। इस तरह की अभिरुचि केवल प्रसाद पंत निराला महादेवी की ही तो हो गई ऐसा भी नहीं है। उन कविताओं को बड़े आग्रह के साथ अपनाकर नई पीढ़ी के युवकों ने दिखा दिया कि छायावादी भावना समूची जाति की नई पीढ़ी में वर्तमान है। अधिक संवेदनशील प्राणी होने के कारण उन युवकों में जो विशेष जागरूक थे उन्होंने इस भावना को कुछ पहले अनुभव किया था तथा अभिव्यक्ति कर दिया और अन्य लोग उनकी अभिव्यक्तियों से प्रभावित होकर अपने मन की रुचि को उस ओर धीरे धीरे मोड़ने लगे। जो प्रवाहपति थे इन कविताओं में रुचि न ले सके और न उन्हें समझ ही सके, परंतु जो उत्थान उस युग में समाज की प्रगतिशील शक्तियां थी उन्होंने छायावाद को अपना समझा। इस तरह छायावाद हमारी विशेष सामाजिक और साहित्यिक आवश्यकता से पैदा हुआ और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसने ऐतिहासिक कार्य किया। समाज और साहित्य को उसने जिस तरह पुरानी रूढ़ियों से मुक्त किया उसी तरह आधुनिक राष्ट्रीय और मानवतावादी भावनाओं की ओर भी प्रेरित किया। व्यक्तित्व की स्वाधीनता, विराट कल्पना, प्रकृति साहचर्य, मानव प्रेम, व्यक्तिक प्रणय, उच्च नैतिक आदर्श, देशभक्ति, राष्ट्रीय स्वाधीनता आदि के प्रसार द्वारा छायावाद ने हिंदी जाति के जीवन में ऐतिहासिक कार्य किया। कविता के रूप विन्यास को पुरानी संकीर्ण रूढ़ियों से मुक्त करके उसने जीवन अभिव्यंजना प्रणाली के लिए द्वार खोल दिया। यही नहीं, छायावादी काव्य ने अपने युग के अन्य साहित्य रूपों को भी प्रभावित किया। छायावाद वस्तुतः एक व्यापक जीवन दृष्टि थी जिसकी अभिव्यक्ति सामान्य रूप से कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, आलोचना आदि सभी माध्यमों से हुई, परंतु भावात्मकता के कारण उसकी विशेष अभिव्यक्ति कविता में ही हो सकी और उसी से वे प्रधानता भी मिली। प्रसाद की आकाशदीप, स्वर्ग के खंडहर में आदि कहानियां कथा साहित्य में छायावाद का प्रसार है। प्रेमचंद के सेवा सदन, प्रेमाश्रम, गबन आदि उपन्यासों का अंत जो सदनों और आश्रमों के आदर्शों में हुआ है उसे भी छायावादी जीवन दृष्टि का परिणाम समझना चाहिए। निराला के अलका, अप्सरा, निरुपमा आदि उपन्यासों पर छायावादी कल्पना प्रियता का गहरा रंग है। प्रसाद की तितली, छायावादी पुतली, पंत की ज्योत्सना तो छायावादी कल्पना की सृष्टि है ही। प्रसाद के अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, कामना आदि नाटकों में भी छायावादी रूमानियत रची हुई है। निराला के प्रबंध, प्रतिमा के भावात्मक निबंध तथा संस्मरण, महादेवी के रेखाचित्र भी अपनी काल्पनिक उड़ान तथा भावुकता में छायावाद से टक्कर लेते हैं। निराला पंत प्रसाद और मुक्ता महादेवी के आलोचनात्मक निबंधों की विचार प्रणाली तो छायावादी भावुकता से प्रेरित है ही। छायावाद के प्रभाव से हिंदी में प्रभाववादी समीक्षा की एक प्रणाली भी चल पड़ी। शांतिप्रिय द्विवेदी इसी समीक्षा सागर की तरंगों में फेंकी हुई एक मड़ी है। नगेंद्र की आलोचनात्मक दृष्टि भी छायावादी रस से ही खुली और नंदुलारे वाजपेयी के विचार स्फुलिंग छायावाद के ही वकालत में छिटके। सबसे बढ़कर आश्चर्यजनक प्रतीत होने वाली बात तो यह है कि छायावाद युग के पुरोधा समीक्षक आचार्य शुक्ल के समीक्षा सिद्धांतों के निर्माण में भी छायावाद का बहुत अधिक हाथ है। उनका पहला आलोचनात्मक निबंध कविता क्या है छायावादी विचारों का ही समर्थक है। कविता की परिभाषा में उन्होंने श्रेष्ठ सृष्टि के साथ रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह की जिस बात पर जोर दिया है वही तो छायावादी भी कहते थे। उनकी श्रेष्ठ सृष्टि भी तो मुख्यतः प्रकृति निसंदेह आदिम वन प्रकृति ही थी। आदिम प्रकृति की ओर लौटने की बात छायावादियों से अधिक तो शुक्ल जी ही करते थे। रागात्मकता पर इतना अधिक जोर और कविता के भाव योग कहना छायावाद की ही तरह द्विवेदी योगीन इति वृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया थी। शुक्ल जी की रागात्मकता छायावादी भावुकता की ही प्रौण स्थिति थी। रीतिवादी अलंकृत के विपरीत रसवाद की प्रतिष्ठा करना आलोचना के क्षेत्र में वही कार्य था जो कविता के क्षेत्र में छायावाद कर रहा था। शुक्ल जी का रस सिद्धांत वस्तुतः छायावादी कविता की आवश्यकता से उत्पन्न हुआ था। उसकी शब्दावली पुरानी भले ही रही और कहीं कहीं उसमें प्राचीन के पुनरुत्थान का भी पुट था, किंतु मूलतः वह आधुनिक भावधारा है। रसात्मक बोध के विविध रूप में उन्होंने जिस प्रत्यक्ष रूप विधान, स्मृत रूप विधान और काल्पनिक रूप विधान का समावेश किया वह क्रमशः छायावाद का प्रकृति प्रेम, अतीत प्रेम और कल्पना सृष्टि ही है। जो लोग यह समझते हैं कि वे छायावादी कल्पना के विरोधी थे उनके भ्रम के निराकरण के लिए शुक्ल जी का यह कथन उद्धरणीय है। आरोप विधायनी कल्पना की अपेक्षा प्रकृति के बीच किसी वस्तु के गुण और अगुण संबंध प्रसार का चित्रण करने वाली कल्पना अधिक गंभीर और मार्मिक होती है। कल्पना के द्वारा वे भी अखिल सत्ता के एकत्व की आनंदमयी भावना जगाकर हृदय के बंधन खोलने का अभ्यास करते थे। उनकी नैतिक मान्यताएं भी उस हद तक छायावाद के साथ थी जहाँ तक वे पुरानी रूढ़ियों का प्रयोग करते अथवा देश प्रेम, राष्ट्रीय उत्थान और लोक मंगल का आग्रह करते हैं। उनका हृदयवाद प्रकारांतर से छायावाद ही है। रचना की महानता से ही आलोचना महान होती है। यह छायावादी रचना का वैभव ही था जिसने हिंदी में आलोचना के मान को ऊंचा उठा दिया, अन्यथा द्विवेदी युग में समालोचना का मान क्या था। परोक्ष रूप से छायावाद ने साहित्य के सामान्य पाठकों की रुचि इतनी परिष्कृत कर दी और काव्य संबंधी सूझबूझ इतनी गहरी कर दी कि आलोचना का सामान्य स्तर भी बहुत ऊपर उठ गया। युग प्रवर्तक आलोचक आलोचना के इसी सामान्य स्तर के अनुसार होते हैं। जिस तरह पानी के स्तर के अनुसार ही कमल नाल बढ़ता चलता है, उसी तरह साहित्य के सामान्य स्तर के अनुसार ही कवि, लेखक और आलोचक बढ़ते हैं। छायावाद ने यही सामान्य स्तर ऊपर उठा दिया। कविता के अतिरिक्त हिंदी गद्य शैली को छायावाद ने कहां से कहां पहुंचा दिया, इसे समझने के लिए छायावाद युग के स्वस्थ, सशक्त और मांसल गद्य के सामने द्विवेदी युग के गद्य और अस्थिपंजर रख लेना पर्याप्त है। इतने बड़े परिदृश्य में छायावाद को रखकर देखने से पता चलेगा कि उसने हिंदी साहित्य में कितना बड़ा ऐतिहासिक कार्य किया। इस ऐतिहासिक सार्थकता से ही छायावादी कविता के अस्थायी तत्वों पर प्रकाश पड़ता है। अपनी ऐतिहासिक आवश्यकता की पूर्ति करते हुए छायावाद ने साहित्य में कुछ अस्थायी महत्व की भी चीज़ें दी। उसमें अपने युग को प्रभावित करने के साथ ही भावी युगों के मानव समाज को भी रसमग्न तथा प्रेरित करने की सामग्री है। छायावाद का अस्थायित्व तो उसके व्यक्तित्ववाद में नहीं, उसकी आत्मीयता में है। काल्पनिक उड़ान में नहीं, आत्मप्रसार में है। समाज भीरुता में नहीं, प्रकृति प्रेम में है। प्रकृति पलायन में नहीं, नैसर्गिक जीवन की आकांक्षा में है। आवेग पूर्ण भावोच्छ्वास में नहीं, संवेदनशीलता में है। सौंदर्य की कल्पना में नहीं, सौंदर्य की भावना में है। स्वप्न में नहीं, स्वप्न की वास्तविक आकांक्षा में है। अज्ञात की जिज्ञासा में नहीं, ज्ञान के प्रसार में है। आदर्श में नहीं, यथार्थ में है। कल्पना में नहीं, वास्तविकता में है। दृष्टिकोण में नहीं, दृष्टि में है। उचित वैचित्र्य में नहीं, अभिव्यंजना के प्रसार में है। छायावादी कविता की आत्मीयता प्रकृति प्रेम, सौंदर्य भावना, संवेदनशीलता, अथक जिज्ञासा, जीवन की लालसा, उच्चतर जीवन की आकांक्षा और इन सब के लिए संघर्ष करने की अनवरत प्रेरणा छायावादी कविता का अस्थायी संदेश है। छायावाद हमें रसमग्न करके निष्क्रिय नहीं बनाता, बल्कि उद्बुद्ध करके सक्रिय बनाता है। वह हमारी भावनाओं को व्यापक, अनुभूति को गहरी और भावों को परिष्कृत तथा परिवर्तित करता है। साहित्य में छायावाद को गौरवपूर्ण स्थान दिलाने में सभी छायावादी कवियों का योग समान नहीं है। निराला यदि भाव और अभिव्यंजना के नए नए विविध पर पथ निकालने में सबसे आगे रहे, तो पंत सौंदर्य चयन और अभिव्यंजना शक्ति संवारने में अग्रणी रहे। महादेवी ने प्रकृति के विरोध में सबसे अधिक कार्य किया, तो प्रसाद इन सभी कवियों की सफलताओं को पूंजीभूत करने में सबसे अधिक सफल रहे। इसलिए उनकी कामायनी छायावाद का प्रतिनिधित्व काव्य है। प्रसाद ने नवोन्मेष सबसे कम है, फिर भी छायावाद का पूरा प्रतिनिधित्व वही करते हैं। यदि छायावाद के एक एक तत्व को दृष्टि में रखकर मूल्यांकन करें तो एक एक करके निराला और पंत की उपलब्धि सबसे अधिक मानी जाएगी। इन दोनों कवियों में यदि जीवन की वास्तविकता के विविध पहलुओं को देखें तो निराला सर्वोत्कृष्ट कवि सिद्ध होंगे। औरों की अपेक्षा निराला का दृष्टिकोण भी अधिक प्रगतिशील रहा है, क्योंकि उनमें वास्तविकता का बोध सबसे अधिक था। और वह बोध इसलिए अधिक था कि जीवंत वास्तविकता के साथ उनका संबंध सबसे अधिक रहा है। निराला के काव्य में यह शक्ति और सौंदर्य इसलिए सबसे अधिक आ सका कि वे सामाजिक जीवन में सबसे अधिक जागरूक और सक्रिय रहे। इस गतिशीलता के कारण निराला उन आदर्शवादी और पलायनवादी भ्रमों में कम फंसे जिनसे प्रसाद सबसे अधिक ग्रस्त थे और उनके बाद पंत भी। इतना होते हुए भी यह विचारणीय बात है कि निराला के काव्य में एक बिखराव है, उसमें अंतः संगठन का अभाव मिलता है। इसके विपरीत इतने अवैज्ञानिक विचारों के होते हुए भी प्रसाद के काव्य विशेषतः कामायनी में एक अंतर्गठन मिलता है। यही अंतर्गठन कामायनी को यह शक्ति देता है जिसके कारण वह छायावाद की अनेक बिखरी रचनाओं के बीच स्तंभ के समान खड़ी है। संभवतः प्रसाद के इस अंतर्गठन का कारण उनका व्यक्ति तो है, जिसकी जड़ें बहुत गहराई तक परंपरा में गई थी। परंपरा का यह जीवित बोध ही है जिसने प्रसाद को संगठन शक्ति दी और वे छायावाद के बिखरे प्रयत्नों को एक जीवन सत्य में पिरोकर कामायनी जैसी कृति दे सके। इसी के अभाव में निराला यमुना के प्रति, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति और तुलसीदास जैसे बिखरे प्रयत्नों को एक में न गूंथ सके। फिर भी यदि निराला की इन चारों कृतियों को एकत्र कर दिया जाए तो वे कामायनी से श्रेष्ठ सिद्ध होंगी। जो हो, इन चारों कवियों के प्रयत्न से छायावाद के चार पक्ष पुष्ट हुए, परंतु इतना होते हुए भी छायावाद क्लासिक कवियों की तुलना में एक देशीय ही रहा। जैसा कि किसी ने कहा है, ताज़ा हवा के पाने के उत्साह में कुछ खिड़कियाँ टूटती ही हैं। उसी तरह काव्यात्मक आवेग में जीवन के कुछ पहलू छूट ही जाते हैं। छायावाद ऐसा ही आवेग था जिसमें जीवन के कुछ पक्ष छूट गए। इस आवेग का कारण उसका व्यक्तिवाद है। इस व्यक्तिवादी प्रवृत्ति ने ही उसका संपर्क व्यापक जनजीवन से भली भांति न जुड़ने दिया। उस जनजीवन से जो युग युग के साहित्य, कला और संस्कृति को अपने अक्षय स्रोत से उत्पन्न और विकसित करता आ रहा है और जिससे अलग होकर कोई साहित्य, कला अथवा संस्कृति जी नहीं सकती। छायावाद की सीमाएं भावी काव्य के लिए उसी अक्षय स्रोत से संपर्क स्थापित करने का संदेश देती हैं। प्रगतिशील साहित्य उसी संदेश की पुकार है। यहीं पर छायावाद नामवर सिंह की पुस्तक समाप्त होती है।